આયોજક તરફથી એક પ્રસ્તાવના માટે મને જે કહેવામાં આવે છે એ જવાબ લઈને એક ભાવ છે. હું એક લાઈફ બોર્ડની શરૂઆત કરું. આયોજક તરફથી પહેલા વાત કરેલી હું માફી માંગું છું ભાઈ, કાર્યક્રમની અંદર થોડી મોડી શરૂઆત કરી શકીએ, કારણ કે આપણા માનનીય ઉપસ્થિત નેતાઓ જેની આવાહન છે અને બીજા આવી ગયા છે. હું હંમેશા કહેતો રહ્યો છું કે પોલિટિશિયન્સને મેનેજ કરવા વગેરે બડી દેર કરતી સનમ તુને આ ગયા, બડી દેર કરતી સનમ તુને આ ગયા, જહેર આવે હવા આવ્યા. બહુ હી લાઇટ હું મેં આપો કહે રહા હું. યા રબ કે મુસ્લિમ કો જિંદા તમન્ના દે, યા રબ કે મુસ્લિમ કો જિંદા તમન્ના દે, જો રૂહ કો તડપા દે, જો કલ્બ કો ગરમા દે. ઇસ દૌર ઝુલમત મેં હર કલ્બ પરેશાં કો, ઇસ દૌર ઝુલમત મેં હર કલ્બ પરેશાં કો وہ بے داغ محبت کے جو چاند کو بھی شرما لے. دن پر آیوجت آم مجلس آیوجت سمیتی سرو دھرم سرو بکیے آئے طرف سے آپ سر کے حاضر مہمان تھا جامنا بھائیوں باہر گھر کی پتا لینا والا تھا مہمان آپ سروے نے خوش آمدید میں آپ کو شکریہ کہ ہماری دعوت پر لمبی کہیں آپ پر حاضر ہے آپ کو بڑھنے کو پڑا جائے آزادی کی وراثت کو سنبھال کر دیش کی پرگتی میں قومی ایکتا کا مہتو آج نا حالات میں امن کری ہے آج کئی خوب اگر دینوں سے اپنا بھارت دیش میں آزادی نہ کرے قوم نہ کرے سرکار کی سوچ અને હવે આ આઝાદીને સાચવીને આપણે દેશની પ્રગતિના પંથે લઈ જવામાં તમામ કોમની એકતાની ખૂબ જ મહત્વતા છે. આજના આપણા મુખ્ય વક્તા આ વિષયના મહતરમ મુફ્તી મહેમૂદ સાહેબ જેઓ ખાસ લાયબ્રેરી અહીં ઉપસ્થિત છે, તેઓ ઇસ્લામિક સ્કોલર ઉત્તમ મુફ્તી એટલે કે ઇસ્લામ ધર્મના કાયદા કાનૂન યુનિવર્સિટી ના કેમ્પસ માં એક સુવાક્ય અંકિત કરે છે જે જણાવો આપ સર્વે ઉચિત જણાવ છે. ઇસ્લામ એટલે કલામ હતી, ઇસ્લામ શબ્દનંદન કલામ એટલે સલામતી, અને ઇસ્લામ ધર્મને અનુસરનાર મુસલમાન કે મોમિન છે. આ મોમિન શબ્દના ભાવાર્થમાં પણ અમન નો શબ્દ છુપાયો છે. એટલે જે ધર્મ સલામતીનો પાયો હોય અને એને જે અનુસરે તે મોમિન કે મુસલમાન કહેવાય, તે શાંતિનો ઉત્સ જ હોઈ શકે, તે કદી આતંકવાદીમાં બની શકે, અંદાજ હોઈ શકે. એટલે કે અમારે સ્પષ્ટ અને ડંકા રિપોર્ટ પર કહેવું છે કે આતંકવાદ એ ઇસ્લામ પ્રેમી નથી જ નથી. દરેક ધર્મ શાંતિ સલામતી અને સદભાવનાનો પેગામ જ ધરાવે છે. આવા આતંકવાદીનો કોઈ ધર્મ હોતો નથી, એ અધર્મ છે અને પૂરા સમાજ અને દેશના માટે કલંકરૂપ છે. આ વિષયને વધુ સલાહ સાથે રજૂ કરશે જનાબ માત્ર મુફ્તી સાહેબ. આઝાદીની આપણી આ સરવડ અને આઝાદી આપણને જે મળી એના માટે જે જદ્દોજહેદ, જે તકલીફો આઝાદી પહેલાના આપણા નેતાઓએ પ્રજાએ જે ઉઠાવી, તેની એક નાનકડો કિસ્સો આ સમય કહેવું ઉચિત જણાશે. આવી કુમારી સુધારે આપણા દરેક નેતાઓમાં દરેક પ્રજામાં આવી જાય. બાળ ગંગાધર લોકમાન્ય તિલક સ્વરાજ કરોડ વખતે એમણે એક નારો બુલંદ કર્યો, સ્વરાજ મારો જન્મ સિદ્ધ હક છે અને એ હું લઈને જ છું. આ એક નારો, આ એક સ્લોગન આખા દેશની અંદર એટલી બધી ચળવળ એને ઉભી કરી દીધી કે બ્રિટિશ સલ્તનતનો પાયો હજી નથી રહ્યો. બ્રિટિશ સલ્તનતે એમને પકડીને એમના પર કેસ કરાવ્યો. આ કેસની સુનાવણી મુંબઈ કોર્ટમાં જયારે થઈ ત્યારે એમના ડિફેન્સ કાઉન્સલ હતા મોહમ્મદ અલી ખુરાના. કેસની સુનાવણી થયા બાદ બ્રિટિશ જજે જયારે એમના માટે એક સુધારો જાહેર કર્યો કે એમને કાળા પાણીની સજા કરી. આ કાળા પાણીની સજા માટે એમણે એક શરત મૂકી દીધી કે જો તેઓ પોતાના આ સ્લોગન આ નારાને જો પાછો ખેંચી લઈને માફી માંગી બ્રિટિશ સલ્તનતને તો તેઓને ત્યાં કાળા પાણીની સજા અંદામાન નિકોબારના બદલે કેરળ જેલમાં ટ્રાન્સફર થઈ જાય. ખૂબ જ સાંભળવાની વાત છે. આ પોતાના વિશ્વાસને સાંભળી સાત હજાર દિવસે એક વખતે એમના જે રિએક્શન આપ્યા છે એ ખરેખર સાચી બતાવી છે. તેને હું વિશેષ સંતોષની માફી માંગીને અંદામાન નિકોબારના બદલે જો પુનામાં હું ખેરવડા જેટમાં હું રહેવાનું સ્વીકારું તો એ મારા માટે અંદામાન નિકોબારથી પણ ખતર છે. મારે તેને કોઈ માફી માંગી નથી. બ્રિટિશ સંતન ચાહે તે જેલમાં મારે મોકલે, અંદામાન નિકોબારમાં કાળા ભરીને સુજાય છે. આપકો મારી માટે જવાબ સાંભળી ખરેખર એ વખતને જઈ ખરેખર મારાથી આઝાદીના પુનઃ ખૂબ લાગ્યું. આપણો ભારત દેશ એક માનવ અન્ન સમાન છે. એમાં રહેતી તમામ પ્રજા જુદા જુદા અવયવો અનુકૂળ સમાન છે. જો શરીરનું કોઈપણ એક અંગ ને જો લકો લાગી જાય જેને પેરાલિસિસ થઈ જાય તો આ આખું માનવ શરીર તંત્ર ભૂલી પડે. અને શરીર એ કામે નહીં કરી શકે. આજ બધી જો દેશની અલગ અલગ કોમો માંથી કોઈ પણ એક કોમ જો લકવાગ્રસ્ત થઈ જાય તો તેના કારણે આખા શરીર પર એવી અસર પડે તો આખા શરીરનો વિકાસ, આખા દેશનો વિકાસ નહીં રહે, દેશની પ્રગતિનું થાય નહીં. ઇન્સાનના આમાલ એવા હોય કે જે એના આમાલથી એનો જીવન જીતે. અને સુશ્રુત ઇસ્લામના અંદર એના પર એક ખાસ છે કે દરેક ઇન્સાનના હાલાત, દરેક દેશના હાલાત એ દેશની પ્રજાના આમાલ પર આધારિત છે. અને એટલે આપણે આપણા કાર્યો, આપણા આમાલને આપણે ખૂબ નેટ બનાવીએ અને એટલી સમજીની પ્રજા તરીકે આપણે લઈએ ખરેખર આજે આપણે વિકાસશીલ દેશોમાં જે આપણે પગડી આવી ગયા છે આપણે એમાં આગળ સ્થાન લઈ રહ્યા છીએ. શાસ્ત્રોને મારે ખાસ કહેવું કે આ પ્રોગ્રામ ના આયોજકોએ ખૂબ જ મહેનતથી આ પ્રોગ્રામ નું આયોજન કર્યું. સર્વધર્મીય સર્વપક્ષીય આયોજન માટે જે જે છોકરા હોય, યંગ છોકરા હોય, જેને પાલવાના વિદ્યાર્થીઓની ટીમે જે કામ કર્યું છે, જેના સારી રીતે પાલવાની જે હિંમતથી એમને આ પ્રોગ્રામ અંદર કરવા માટે જે સૂચન કર્યું અને જે રીતે આ સર્વની હાજરી જો તમને લાગે છે કે આ કાર્યક્રમ ખરેખર કરીને આ છોકરાઓ સારું કામ કરે છે. ઉમેદ રાખે ઇન્શાલ્લાહ આ મસ્જિદની તમામ શહેર વર્ષોથી આપ સર્વ નવાજ આપણી કોલેજની અંદર એક કાર્યક્રમ છે. એ કાર્યક્રમની હાજરી પતાવી નાયક સાહેબ અને માણસ સાહેબ બાકીના મહાનુભાવોને આવી રહ્યા છે. આપણે આ કાર્યક્રમને આગળ વધારીએ ખાસ કરીને જે મુખ્ય લક્ષ્ય છે અને આજનો આઝાદીનો પર્વ આઝાદીની આ કુમારીના સંદર્ભમાં એ ખાસ કવિ રામપ્રસાદ દ્વિતીયની સ્મૃતિ મને યાદ આવે છે. દેખતા હું મેં જીતે ચુપ તેની મહેફિલ મેં હૈ, દેખતા હું મેં જીતે ચુપ તેની મહેફિલ મેં હૈ, ક્યા બતાએ ક્યું બતાએ ક્યા હમારે દિલ મેં હૈ, સર પરોશી કી તમન્ના અબ હમારે દિલ મેં હૈ, દેખના હૈ જોર કિતના વાસ્તે સાફિલ મેં હૈ. આઝાદીના સાચવણ માટે આપણે એવી કુમારી જીવીએ અને આ દેશની પ્રગતિને આગળ લઈ જવામાં ખૂબ ખાસ હતી. આજની આ મજબૂતને કામયાબ બનાવવા માટેની તમામ મહેનતો જે કંઈ કરવામાં આવી છે તે તમામ આયોજકોનો હું આ તબક્કે તમામ કોમ તરફથી આભાર માનું છું. આ વિષયને હવે વધુ ખુલાસાથી જનાબ મુફ્તી સાહેબ આપની સમક્ષ રજૂ કરશે. હવે પ્રસ્તાવના કાર્યક્રમ બાદ સ્વાગતનો કાર્યક્રમ છે જે
খুদামদি স্বাগত খুদ আল্লাহ ঈশ্বর ভগবান গোল সর্ব শক্তিমান দ্বারা আপনি এমনি মেহরবানি দিয়ে আজে আ হলমা এক বিশেষ কার্যক্রম নো আয়োজন আয়োজক দ্বারা থে છે খরেখর অভিনন্দন ને পাত্র છે અને આપ સૌ લોકો ને પણ એ ખરેખર આપ સૌ લોકો નો આભાર કે જે આટલી મોટી સંખ્યામાં આ હોલમાં આપણે ઉપસ્થિત થયા છે એક વિનંતી કે આપણી પાસે જો મોબાઈલ હોય તો કાર્યક્રમની જે શરૂઆત થશે ત્યારે એ મોબાઈલને સાયલેન્ટ પર મૂકી દેશો કે જેથી હલે તો એકબીજાને પહોંચી શકે નહીં એ ખૂબ નમ્ર ગુજારિશ છે આ સાથે સ્વાગતના કાર્યક્રમને થોડો પાછળ લઈએ છીએ એના બદલે નાથ પઠાણ કાર્યક્રમ જે છે જાવેદભાઈ મનસુરી દ્વારા એ કાર્યક્રમને પહેલા રજૂ કરીએ છીએ જાવેદભાઈ મનસુરી
મેં મનસુરી આમંત્રિત કરતા હું જુઓ કોંગ્રેસ કા
بیٹھی ہوئی موجود ہستیاں اور نوابوں کے ہندو مسلم بھائیوں قومی ایکتا پر نظر پڑنے کا حکم ہوا ہے لہذا بغیر کسی تمہید کے نظر سے پہلے چند اشعار پیش کروں گا امید ہے 10 منٹ کے اس مختصر سفر میں آپ میرے ساتھ رہیں سماعت فرمائیں سب سے پہلے ہمارے ماں باپ کے ہندو مسلم بھائیوں کے لیے نظر 4 منٹ کرتا ہوں سماعت فرمائیں کہ چور ہند کا چاند ہے سائے پورن ماشی کے چور ہند کا چاند ہے سائے پورن ماشی کے ہے اور کچھ یہاں اجمیر والے اور کچھ کاشی کے ہیں چور ہند کا چاند ہے سائے پورن ماشی کے ہے کچھ یہاں اجمیر والے اور کچھ کاشی کے ہیں اور اپنی بھارت ماں کی دونوں ہاتھ کی ریکھائیں دیکھ ایشور اور انداز دونوں میں بھی راجی کے ہیں دونوں میں بھی راجی کے ہیں اور چار کے سے آپ کے لیے کہوں کہ محبت کی زبان میں گفتگو کرنا سکھا دوں گا محبت کی زبان میں گفتگو کرنا سکھا دوں گا اور پھٹے دامن کو حکمت سے رفو کرنا سکھا دوں گا اور بجھاؤں گا میں ہندو بھائیوں کی پیار زمزم سے بجھاؤں گا میں ہندو بھائیوں کی پیار زمزم سے اور مسلمانوں کو گنگا میں وضو کرنا سکھا دوں گا آپ کے ساتھ رہے مجھے مل جائے گا چار مسئلے ہمارے اسٹیج پر بیٹھے ہوئے فرسٹ سٹیزن ہمارے نگر ادھیک گوند راموں کے خدمت میں چار بچے پیش کرتا ہوں کہ شام جی کا دودھ مانوتا کا ہر تارا لگے اور ایک تارے منچ پر آکاش کا تارا لگے شام جی کا دودھ مانوتا کا ہر تارا لگے اور ایک تارے منچ پر آکاش کا تارا لگے اور جب بھی ملتے ہو بڑے ہی پیار سے ملتے ہو تم جب بھی ملتے ہو بڑے ہی پیار سے ملتے ہو تم بھی چاہے اور تمہارا کام بھی چاہے چار سے ہمارے بڑے بہت قسمت پیش کر رہا ہوں کہ جب بھی چلتے ہوئے شبھ کام نظر آتا ہے کبھی گوتم تو کبھی رام نظر آتا ہے. جب گزرتے ہوئے جب کام نظر آتا ہے کبھی گوتم تو کبھی رام نظر آتا ہے. اور پریم کی بات کی ہر وقت بجانے والا کام کے رنگ کا گھنشام نظر آتا ہے. اور اخیر میں چار دوسرے حضرت والا مفتی محمود صاحب کی خدمت میں اقبال کے چار دوسرے آخر میں اس کے بعد نظر پڑوں گا کہ غلامی میں نہ کام آتی ہے تصویریں نہ شمشیریں, جو ہو ذوق یقین پیدا تو پڑ جاتی ہے زنجیریں. غلامی میں نہ کام آتی ہے تصویریں نہ شمشیریں, جو ہو ذوق یقین پیدا تو پڑ جاتی ہے زنجیریں. اور کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا, کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا, مزاج مرد مومن سے بدل جاتی ہے تصویریں. نظم ہے میرا بھارت ماں بھگوان کی دیا ہے خدا مہربان ہے, خدا مہربان ہے. بھگوان کی دیا ہے خدا مہربان ہے, خدا مہربان ہے. بھگوان کی دیا ہے خدا مہربان ہے, بھارت مہان ہے میرا بھارت مہان ہے, بھارت مہان ہے میرا بھارت مہان ہے. اور شیر خان آنگن میں لہراتی ہے تلسی کی ڈالیاں, آنگن میں لہراتی ہے تلسی کی ڈالیاں, گنگا کی بوند بوند ہے امرت کی چالیاں, جمنا کے تٹ پہ آج مرلی کی تان ہے. بھارت مہان ہے میرا بھارت مہان ہے, بھارت مہان ہے میرا بھارت مہان ہے. اور جے جان کو زندگی کا نمونہ بنا دیا, نمونہ بنا دیا, جے جان کو زندگی کا نمونہ بنا دیا, پتھر کو ہم نے تاج و اجنتا بنا دیا. حیرت میں جس کو دیکھ کے سارا جان ہے, بھارت مہان ہے میرا بھارت مہان ہے, بھارت مہان ہے میرا بھارت مہان ہے. اور ماحول پرسکون ہے چنتا نہ کوئی غم, چنتا نہ کوئی غم, ماحول پرسکون ہے چنتا نہ کوئی غم, مل جل کے رہ رہے ہیں ہزاروں برس سے ہم. گوپال کے بغل میں ایسا مکان ہے, بھارت مہان ہے میرا بھارت مہان ہے, بھارت مہان ہے میرا بھارت مہان ہے. اور دل میں بہت جنوں ہے وطن کے واسطے, وطن کے واسطے, دل میں بہت جنوں ہے وطن کے واسطے, حضر ہمارا خون ہے وطن کے واسطے. سر سے کفن بنا ہے ہتھیلی پہ جان ہے, بھارت مہان ہے میرا بھارت مہان ہے, بھارت مہان ہے میرا بھارت مہان ہے.
چلا راتا اب چل سن بلا مہین کا بلا مہین کا لارا تا اب چل سن بلا مہین کا کرکے تمہیں لاب نہیں ہے سکی کا اب لارا کا اب چل سن بلا مہین کا کرکے تمہیں لاب نہیں ہے سکی کا اب تو ہمارے پاس بہن اور بہان ہے بھارت مہان ہے بھارت مہان ہے میرا بھارت مہان ہے
اور
آج سے ہر چڑھاؤ کو سورج بنائیں گے سورج بنائیں گے آشا کے ہر چراغ کو سورج بنائیں گے ہم عید اور دیوالی اسی دن منائیں گے لاکھ تمہاری نظر میں وہ پھر دوستان ہے بھارت مہان ہے میرا بھارت مہان ہے بھارت مہان ہے میرا بھارت مہان ہے بھگوان کی دیا ہے خدا مہربان ہے بھارت مہان ہے میرا بھارت مہان ہے
آپ نے اپنی شاعری والا قومی اتر درد کا اور بھی منظر کیا ہم سب نے راجیہ کا جاگرک کرنے کی کوشش کی اور وہاں سے پریرنا دی ہماری آج بھی مہمانوں کا سواگت کیا جاتا ہے اور ہم اب آج بھی مہمانوں کا سواگت ہم سرکار کا کاریہم شروع کرنے جا رہے ہیں اور میں شری ہنسمکھ پاٹل صاحب تعلقات کے شیوسینا جنہیں آمنت کرتا ہوں وہ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب پاٹل ممبر آف آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اور ممبر آف آل انڈیا اسمبلی کے ان کا سواگت پشپ روپی اور اسنیہ سے لے کر کرے شری ہنسمکھ پاٹل
سروسنگ کے انتظار
آج کے کارکرم کے ادھیش ماننی نامدار شری منتری مہاراشٹر منگلوار شاہ منگلوار ضلع کے سانسد ایوم بھوتپورو کے گرو راجن مندر شری مان صاحب کا سواگت کیا گیا ہے. ساتھ ہی منگلوار ضلع پولیس ادھیشک شری سمر کے ساتھ کا وہاں پر سواگت کیا جا رہا ہے. سبھی مہمانوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنا سان گرہن کریں.
جانگر سے اس کا آگے بڑھ سکا احمد صاحب ہمارے ناسک ہے ان سبھی ساتھیوں کو آمنت کرتا ہوں وہ ریاست پر یہ لانا سبھی مہمانوں کا مہانوبھاؤ کا سوال کچھ ہو سکے اور پھر اس لیے ہوتا ہے
कार्यक्रम के मुख्य वक्ता हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद साहब अभी अभी अपने जिले को नए से जिनकी नियुक्ति हुई वो डीएसपी साहब मुफ्ती साहब मेरे साथी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव सर दिलीप नाइक सर डोकारी कारखाना के चेयरमैन श्री गिरीश नाइक माजी भूतपूर्व नगराध्यक्ष श्री गिरीश गावित डोकारी सहकारी साखर कारखाना के वाइस चेयरमैन श्री भरत भाई गावित शिवसेना के तालुका अध्यक्ष श्री हसमुख भाई पाटिल विविध पक्ष के सम्माननीय मंच पर बैठे हुए सब अतिथिगण आप सब उपस्थित भाइयों सबको मेरा सलाम नमस्कार और फिर सलाम। आज का जो विषय है आजादी की विरासत को संभाल कर देश की प्रगति में कौमी एकता का महत्व विषय बड़ा रोचक है, बहुत बड़ा विषय है और इसके बारे में मैं खुद कोई आभार भी नहीं है कि इसके बारे में इतना मैं जानकारी आपको दे सकूं। आज के जो प्रमुख वक्ता है हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद साहब, ये इसके बारे में विस्तार से आपसे बात करेंगे। कल ही हम लोगों ने अपनी आजादी का 62वां जन्म में हमें इसको क्या बोलेंगे अभी मराठी में जन्म का हमने समारोह आयोजित किया हुआ था। देखो 62 साल कैसे गुजर गए मालूम नहीं पड़ा। देश में बहुत सारी समस्याएं हैं, समस्याएं आने वाली भी है, आ रही है, लेकिन मैं समझता हूँ सबसे बड़ी समस्या अपने हिंदुस्तान देश के लिए बड़ी समस्या कौन सी होगी तो आबादी। आबादी और दूसरी जातीयता। देश में ये दो जो बातें हैं, दो जो समस्याएं हैं, अगर ये सुलझ जाती है तो अपने देश में आजादी, शांति, प्रेम, अमन ये रह सकेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। देश जितना विशाल है उसकी इतनी आबादी की आबादी को हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। मेरे ख्याल से 110 करोड़ आबादी अपने देश की हो चुकी है, ज्यादा होगी कम नहीं होगी। और जैसे जैसे हम लोग तरक्की करते जा रहे हैं करते जा रहे जैसे वैसे समस्याएं बढ़ती जा रही और दुर्भाग्यवश इसमें कौमवाद जो है ये बहुत ज्यादा पैमाने पर बढ़ रहा है, ऐसा मैं मानता हूँ। और अपने तरक्की के बीच में ये कौमवाद ही ज्यादा अड़खला लाता है, ये भी मुझे लगता है। हर एक राजनीति अगर करते राजकीय पार्टियां भी इसका ज्यादा वापर कर रही है आजकल। ये मैं यहाँ आपके सामने स्पष्ट बोलता हूँ कि कहाँ भी इलेक्शन हुए तो पहले ये देखते हैं कि कौन से जात के, कौन से धर्म के, कौन से पंथ के लोग कौन से इलाके में कितने जा रहा है, और वही कैंडिडेट वही पार्टियां देने की कोशिश करती है। तो एक तरफ से हम ये जातीयवादी शक्तियों को अपन एक प्रोत्साहन ही देते हैं, ऐसा होता है। तो ये हर एक पॉलिटिकल पार्टी में भी सोचना चाहिए कि ये बात अगर ये कौमवाद, जातीयवाद, पंथवाद ये अगर इसको नष्ट करना है तो कि कोई भी जात का हो, कोई भी पंथ का हो, लेकिन वो जो डिजर्विंग कैंडिडेट जिसको बोलते हैं, मेरिट वाला कैंडिडेट है, उसको अगर आप खड़ा करें और उसको चुन के लाए तो बहुत अच्छा काम हो सकता है। देश में जो देश की जो अखंडता है, शांति है, अमन है, चयन है, वो भी सुरक्षित रहेगा। लोकसंख्या के बारे में तो मैंने बताया कि ये कंट्रोल नहीं हो रहा है, कंट्रोल होना जरूरी है। आज जो देखो बारिश नहीं हो रही है, अकाल की परिस्थिति पूरे हिंदुस्तान में दिखाई दे रही है। अगर ये बारिश नहीं आती है अगले और 15-20 दिन महीने में तो परिस्थिति अपने कंट्रोल के बाहर जा सकती है। तो लोगों को क्या खिलाना क्या पिलाना ये मुसीबत पैदा हो जाएगी।
तो ये दो समस्याएं के बारे में आज के ये परिषद में सोचना चाहिए, पर मैं मानता हूँ नवापुर शहर को अमन शांति और सांस्कृतिक सहयोग के बारे में ये बहुत ही अच्छा शहर माना जाता है और ऐसा है भी, इसके बारे में कोई शक नहीं है। लेकिन हम लोगों ने खाली नवापुर के बारे में नहीं सोचना चाहिए, तो पूरे हिंदुस्तान अपने देश के बारे में सोचना चाहिए, अपने देश की अखंडता और देश में शांतता ऐसी है, इसके बारे में सोचना चाहिए। कोई धर्म अपने को ये नहीं सिखाता कि आपस में लड़ो, आपस में लड़ाई करो, झगड़े करो। सब धर्म के जो ग्रंथ है वो यही सिखाते हैं कि सब में भाईचारा का नाता रखना चाहिए, आपस में लड़ना नहीं चाहिए, आपस में भी सुनते रहना चाहिए। ये बात सब में ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ पर मुझे बुलाया, मेरा सम्मान किया, मुझे दो शब्द बोलने की इजाजत दी, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। जय
मन को तो कार्यक्रम को रुकाते हुए अपने भी बताइए कार्यक्रम करने जा रहे हैं। अब मैं आए थे बजे के लिए आपको बात की आदिवासी सेवा सहाय को संरक्षण चुनाव
मैं आमंत्रित करता हूँ कि वो माननीय नामदार श्री माणिकराव गावडे साहब केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री उनका स्वागत करें।
नमस्कार,
नमस्कार।
मैं
आपको अब मैं आयुष भाई बले करिया मैं आमंत्रित करता हूँ कि वो नवापुर के उद्योगपति श्री जितिन भाई चौखावाला इनका स्वागत कुछ से कुछ एवं भेद वस्तु देकर करें। बिजली की समस्या के बारे में आप सब जानते ही हैं। कुछ समस्या के कारण थोड़ी देर में जनरेटर की सुविधा हो रही है और उसके बाद कार्यक्रम शुरू रहेगा। कृपया शांति रखें।
My
हंसा और उसके या जिला के पालक मंत्री नामदार पुरुष सिंह जनाई, खासदार मानिकराव जी गाड़ी, आज ज्यांचे विचार ऐकण्यासाठी म्हणून आपण या ठिकाणी आलेलो आहोत, ते हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद साहेब, जिल्ह्याचे एसपी साहेब मस्के, या नवापूर नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष माझे मित्र गोविंदराज साहेब, मंचकावर उपस्थित सर्व प्रतिष्ठित सज्जन, उपस्थित सर्व बंधू भगिनी आणि पत्रकार मित्रांनो, कौमी एकताच्या संदर्भामध्ये या ठिकाणी आपण ज्येष्ठांचे विचार ऐकणार आहोत. मला वेळ दिली आहे 5 मिनिटाची आणि 5 मिनिटांमध्ये काही चांगलं बोलता येईल अशी परिस्थिती नाही, तरी देखील मी थोडक्यामध्ये माझे विचार या ठिकाणी मांडण्याचा प्रयत्न करेल. आपण कौमी एकतासाठी या ठिकाणी जमलेलो आहोत, त्या संदर्भातले विचार ऐकण्यासाठी या ठिकाणी आपण जमलेलो आहोत. कालच आपण या देशाचा 62वा स्वातंत्र्य दिन साजरा केला, म्हणून या देशाचे पंतप्रधान यांनी काल लाल किल्ल्यावरून बोलताना जो नारा दिला तो नारा मी देतो आणि आपल्या आपण सगळ्यांनी त्याला प्रतिसाद द्या असं मी तुम्हाला सर्वप्रथम विनंती करतो. जय हिंदचा नारा मी देईल, त्याच्यामध्ये आपण सगळ्यांनी जय हिंद म्हणा.
जय हिंद
दम नहीं है.
जय हिंद जय हिंद.
धन्यवाद. भारत देशाला स्वातंत्र्य मिळायला आज आपण 62 वर्ष पूर्ण करत असताना अनेक प्रश्न या देशासमोर आहेत आणि त्याचा उहापोह काल आदरणीय पंतप्रधान मनमोहन सिंगजी आणि त्यांच्या भाषणामध्ये केला. खूप काही बोलण्यासारखं आहे. या देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देणारे जे नर होऊन गेले, जे महापुरुष होऊन गेले, त्या महापुरुषांनी ब्रिटिशांच्या जन्मामधून या देशाला मुक्त करण्यासाठी म्हणून जे बलिदान केलं, जो त्याग केला, आपलं स्वतःचं घरदार वाऱ्यावर सोडून या देशासाठी जे लोक प्राणपणाने लढले, त्यांच्या मनामध्ये काहीतरी उद्देश होता, त्याच्या मनामध्ये काहीतरी विचार होता. हा देश गुलामीमधून बाहेर काढणं एवढा काही त्यांचा उद्देश नव्हता, तरी सुद्धा हे लोक लढले. अनेकांची नावं घेता येतील या ठिकाणी, ज्याने हौतात्म्य पत्करले या देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी. परंतु मला मुद्दाम आठवण करून द्यायची आहे त्या आदिवासी नेत्यांची, त्या आदिवासी महापुरुषांची, ज्यांची आपल्याला माहिती नाही की त्यांनी या देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी म्हणून फार मोठा त्याग केला, फार मोठ्या क्रांतिकारी लढाया केल्या आणि या देशाच्या स्वातंत्र्य लढ्यामध्ये त्यांनी फार मोठ्या प्रमाणावर भाग घेतला. आपल्याला माहित नाही बऱ्याचशा लोकांना बिरसा मुंडा म्हणून एक क्रांतिकारक आदिवासींमध्ये होऊन गेले, उन गुलाम नावाचं आंदोलन त्यांनी चालवलं आणि त्या भाषांमध्ये इंग्रजी हुकूमतच्या विरोधामध्ये एक मोठं आंदोलन चालवलं. फक्त स्वातंत्र्यासाठीच नाही तर जो शोषित होता, जो आदिवासी होता, जो मागास होता, सामान्य माणूस होता, त्याला सावकारांच्या हातामधून सोडवण्यासाठी देखील त्यांनी आंदोलन केलं. कदाचित या देशाला विश्वास पडला असेल अशा बातम्यांचा, परंतु आज ही आदिवासी समाज त्याची आठवण करत आहे. फार दूर जायचं कारण नाही. मध्य प्रदेश आणि खानदेशच्या सीमावर्तीमध्ये वीर खाजा नाईक होऊन गेला, या देशाला ज्यांनी स्वातंत्र्य मिळवून दिलं त्यामुळे
एक माता की भूमिका मैंने बजा दी। जरा अंबापाणी की लड़ाई मंडली जाते क्या अंबापाणी का लड़ाई मध्य या वीर खाजा नाईक ने वीर पलटन की मदद घी आणि त्या पलटणीच्या जोरावर ब्रिटिशांना देशामधून हाकून लावण्यासाठी एक मोठी चळवळ उभारली। या निमित्ताने त्यांची आठवण करणं हे माझ्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचं आहे। राजस्थानमध्ये भागवत नाईक नावाचा एक भिल्ल होऊन गेला, शूरवीर मर्द होता तो, महाराणा प्रताप बरोबर त्याने काम केलं आणि या देशाच्या लढाईमध्ये स्वातंत्र्य संग्रामध्ये फार मोठं योगदान दिलं। स्वातंत्र्य तर मिळालं परंतु या विविधतेने लढलेल्या या देशामध्ये जिथं अनेक जाती आहेत, अनेक धर्म आहेत, अनेक प्रांत आहेत, अनेक प्रकारचे विचार, अनेक प्रकारच्या जमाती, अनेक प्रकारच्या जाती आहेत, त्या देशामध्ये आता शांती आणि स्थिरतेची गरज आहे। आणि ती कोणी टिकवायची जो तो एकमेकाकडे बोट दाखवतो, परंतु ती टिकवायची असेल तर आपण सर्वजण आहोत। या देशामधली जी या आशिया या देशामधले संपूर्ण सगळ्यात महत्वाची जी घटना आहे जिने लोकशाही आपल्याला दिलेली आहे, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर साहेबांनी त्या कोणी एकताच्या संदर्भामध्ये आज आपण बोलतो, आज आपण विचार ऐकतो, परंतु ज्यावेळेस बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटना लिहिली ती घटना लिहित असताना या देशामध्ये शांतता, स्थिरता, समभाव, एकमेकांमधलं प्रेम, एकमेकांमधली प्रीती कशा पद्धतीने टिकून राहील, सगळ्यांना समान कसं भेटलं जाईल या देशामध्ये, सगळ्यांना समान न्याय कसा मिळेल या संदर्भामध्ये ही घटना लिहित असतानाच त्यांनी त्या ठिकाणी प्रावधान केलं। महात्मा गांधींनी जो त्याग केला, महात्मा गांधींनी जो अहिंसेचा मार्ग अवलंबला तो मार्ग आपण आज विसरून गेलेलो आहोत। तुम्ही आणि मी ते मार्ग आपण सोडून दिलेला आहे आणि आज प्रत्येक जात, प्रत्येक धर्म, प्रत्येक कौम थोडं काय झालं की एकमेकाच्या विरोधामध्ये आपण बोलायला सुरुवात करतो। गरज आहे ती शांतीची, शांत डोके ठेवून विचार करण्याची। बरं, या देशामध्ये जी अराजकता आणि अशांतता निर्माण होत आहे त्यावर जी कारणं आहेत ती कारणं काढून टाकण्यासाठी म्हणून आपण प्रयत्नामध्ये कमी पडतो असं आज दिसत आहे। आज या देशामध्ये बेरोजगारी आहे, आज बेरोजगार तरुणांना हाताशी धरून त्यांना या देशामध्ये अराजकता निर्माण करण्यासाठी म्हणून त्यांचा उपयोग करून घेतला जात आहे। म्हणून या देशामध्ये शांती अमन जर पाहिजे असेल तर या देशामध्ये जी बेरोजगारी आहे, या देशामध्ये जो तरुण आज बेरोजगार आहे तो फिरत आहे, रोजीरोटीसाठी तो आज रात्रंदिवस ठिकठिकाणी भटकतो आहे, त्याला काम देण्याची गरज आहे। जर शांती हवी आहे तर या देशामध्ये उद्योग निर्माण होण्याची गरज आहे, या देशामध्ये विकासाची गंगा आणण्याची गरज आहे। खरंच आपण या देशामध्ये आपल्या ज्या राज्यकर्त्यांनी आपल्याला एवढं मोठं हे स्वराज्य मिळवून दिलं, स्वातंत्र्य मिळवून दिलं तर त्याचा उपयोग एक चांगला होऊ शकेल। असं म्हणतात की भारत हा विविधतेमध्ये एकता निर्माण करणारा देश आहे। खरं देशामध्ये त्याच्यामुळेच आपला भारत देश एक महान आणि क्रांतिकारी देश म्हणून ओळखला जातो, एक शांतीप्रिय देश म्हणून ओळखला जातो। या देशाबद्दल सर्व दुनियेमध्ये हा आदर आहे, परंतु आपल्याला आदर आहे का हे आपण विचार करण्याची गरज आहे। हा जो महान देश आहे, हा जो महान परंपरेचा देश आहे, हा जो महान संस्कृतीचा देश आहे, ह्या संस्कृतीच्या देशामध्ये ह्या देशाबद्दल आपल्याला किती प्रेम आहे। 15 ऑगस्ट आला, 26 जानेवारी आली की आपलं देश प्रेम हे उभारून येणार इतर गोष्टीचा रोज आणि रोज आपल्याला जे स्वातंत्र्य मिळवून दिलं आपल्या राज्यकर्त्यांनी, आपल्या महान पुरुषांनी, ते टिकवण्याचं, ते चालवण्याचं आणि शांतीने राहण्याचं काम आपल्याला करायचं। आपण म्हणाल की देशाचं कोणी बघायचं, नागपूर शहर जर शांत असेल, नागपूर शहरामध्ये एक एक गल्ली शांत असेल तर देश शांत व्हायला काय अर्थ येणार नाही। आपल्यामध्ये जर एकता असेल, आपल्यामध्ये जर स्नेहभाव असेल, एकमेकाप्रती जर आपल्यामध्ये प्रेम निर्माण होणार असेल, ते जर आपण दृढ करणार असेल तर देशाला ती मदतच होणार आहे। म्हणून या निमित्ताने मी एवढं सांगतो, खूप काय सांगण्यासारखं आहे, कमी शब्दामध्ये बोलणं हा आमचा स्वभाव नाही आणि कमी शब्दामध्ये मांडणं आणि तेही एवढ्या चांगल्या विषयावर हे सुद्धा या ठिकाणी अडचणीचं आहे। परंतु एकच आपल्या सर्व बंधूंना मी एकच आवाहन करतो, या देशामध्ये जे बलिदान आपल्या महापुरुषांनी केलेलं आहे ते बलिदान असतं, ज्या कारणासाठी म्हणून हा देश त्यांनी आपल्याला स्वतंत्र करून दिला, आपल्याला स्वातंत्र्य मिळवून दिलं, त्याच्या मागचं जे काही गुपित आहे, त्याच्या मागचं जे रहस्य आहे, त्याच्या मागची जी भावना आहे ती भावना ओळखा आणि त्याप्रमाणे आपण वागूया. प्रत्येकाने जबाबदारीने या देशाचा एक जबाबदार नागरिक मी देखील आहे हे आपण जाणूया आणि जेणेकरून या देशाला आपल्याला अधिक आणि अधिक महान करता येईल, या देशामधच्या प्रगतीमध्ये आपल्याला वाटा उचलता येईल. या देशामधल्या विविध जाती धर्म पंथ आणि वेगवेगळे लोक याच्यामध्ये प्रीती आणि भावना आपल्याला निर्माण करता येईल. तर एवढं मी या ठिकाणी थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय हिंद.
धन्यवाद सर. और मैं आमंत्रित करता हूँ कार्यक्रम के विशेष अतिथि वो अपने विचारों से हमें लाभान्वित करें. मान्य साहब,
यहाँ पर एकत्रित सभी धर्म के धर्मगुरु आए हैं, ऐसा मैं समझता हूँ. इसीलिए मुस्लिम भाइयों को सलाम, हिंदू भाइयों को नमस्कार करते हुए मैं आज का इस जो प्रोग्राम है आजादी की विरासत को संभाल कर देश की प्रगति में कौमी एकता का महत्व, इस विषय में हमारे जिले के और महाराष्ट्र राज्य के परिवहन मंत्री माननीय नामदार सौरभ सिंह नाई साहब, जो हमारे इस गांव में इस कौमी एकता के महत्व बताने जो आए हैं मुख्य वक्ता हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद साहब बाडोली, और हमारे नवापुर नगर पालिका के नगराध्यक्ष गोविंद राव वसावे, अभी अभी जिन्होंने मराठी में अपने विचार रखे वो दिलीप नाइक साहब, हमारे अभी अभी हमारे जिले में जो पुलिस अधीक्षक साहब जो आए हैं वो भी हमारे प्रोग्राम में हाजिर है. वो यहाँ पर उपस्थित सभी हाजी साहबान, मंच पर सभी विराजमान भाइयों बहनों, यहाँ पर हमारे कारखाने के चेयरमैन श्री नाइक जी, जिला परिषद के सदस्य भरत दावी और सभी समाज के धर्म के इस एकता महत्व को मार्गदर्शन करने आए हुए और इस प्रोग्राम में आमंत्रित सभी भाइयों बहनों, पत्रकार मित्र, छायाचित्र मकान मित्र, जिनका नाम मेरे से ले गया है, सभी भाइयों और बहनों, मैं दूसरा ही एक प्रोग्राम था इसके लिए हम थोड़ा देरी से आए, इसके लिए क्षमा चाहता हूं. आजादी की लड़ाई आप सब लोगों ने, किसी ने देखी होगी, किसी ने सुनी होगी, किसी ने पढ़ा होगा, इस अवसर पर मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन जिन्होंने देश आजादी के लिए बलिदान इस देश के लिए दिया है, कुर्बानियां दी है, इनकी याद रखना बहुत ही जरूरी है। इससे कोई आजादी के लड़ाई में कोई हिंदू या मुस्लिम कोई भी समाज हो, उसका समाजवाद पर चर्चा नहीं हुई। देश के लिए कुर्बानी, देश के लिए बलिदान, और हमारा हिंदुस्तान स्वतंत्र होना चाहिए, यही मनोकामना लेकर देश के लिए, देश को आजादी मिलाने के लिए किसी की परवाह नहीं थी, जान की भी नहीं परवाह थी। उन सभी लोगों को मैं आज याद करता हूं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हमारा देश के आजादी का 15 अगस्त 2009 वापस स्वर्ग हुए, वो कलीन हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया और पूरे देश को यह माना गया, हमारे जो मित्र देश थे वहां भी मनाया गया। और भारत एक बहुत बड़ा 102 करोड़ की आबादी वाला देश है, वहां पर सभी जाति धर्म के लोग इकट्ठा होकर रहते हैं। यहां हम जो पालते हैं सर्वधर्म समभाव, हम सभी धर्मों को समभाव से पालते हैं, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन जिनकी जिनके भी त्यौहार आते हैं उसमें हम शामिल होते हैं। अरब परब ये नवापुर शहर और नंदुरबार जिला और हमारे विजय जिला में बहुत मुश्किल से कई बार ऐसी बातें होती है, वैयक्तिक झगड़े में कोई कोई उसका फायदा उठाते हैं, वो ठीक बात नहीं है। हम धर्म जरूर पढ़ते हैं, लेकिन हम हिंदुस्तानी है, हम देशवासी है, ये देश की देश का अखंडता मजबूत रहे, यही हमारे नेताओं ने परम पूज्य महात्मा गांधी बोलते गए। वो सब से वैयक्तिक झगड़े गली में झगड़े ये नहीं होना चाहिए, तब भी होते इसके लिए यहां पर सरकार की ओर से और सभी नेताओं की ओर से मोहल्ला कमेटी भी बनाई गई थी इस नवापुर में मस्जिद जी मस्जिद के साथ, और हर त्यौहार पर हम गणपति उत्सव हो या मोहर्रम का उत्सव हो या क्रिश्चियन धर्म का नाताल हो, उसमें सब हम एकता होकर एक इंटरनेट के हिसाब से सबके गले मिलते हैं। उसका अर्थ यह नहीं है कि हमको कभी दूसरे समाज के हैं दूसरे धर्म के हैं किसी का भी धर्म, ये नहीं कहता कि मराठी में एक मण है, मराठी માણસ હાથ એક ધરવાય માણસાળા માણસ મળું ઓછા માણસાળા માણસ મળું વાગો જ્યાં માણસાળા માણસ મળું લોકો જ્યાં મળું એ ઘરે ખાતો આદિવાસી મૂળ નિવાસી અધિકાર આહે અમારા પ્રભુ ગયા યા ભાષેત પણ સાંભતો અને મારું અને ઇસીલીએ કે હમ જો ખુદા ને જો ભગવાન ને જીસકો જન્મ દિયા હૈ ઉનકે હમ ઉનકે હમ દેવાળી બચ્ચે હૈ ઇસીલીએ હમ સબ મિલકે એક દેશ કે એકતા ઓર અખંડતા મજબૂત રખને કે લીએ આર્થિક ઝઘડે નહીં કરે ઉસમે કોમવાદ નહીં લાવે કોઈ ભી ધર્મ હો યહી ઇસ યા કાર્યક્રમ કા ઉદ્દેશ્ય ઇસ પ્રોગ્રામ મે જિન્હોને યે પ્રોગ્રામ આયોજિત કિયા હૈ હરીભાઈ વલેસરિયા હાજી ગુલામ ભાઈ વોરા દાબુ બિરાડે અનિલ વસાવે એજસ્ટેડ રિસિટ મોલ હરુણ ખાતે નવલ પાટીલ નરેન્દ્ર લગરાણે ગોટુ પાટીલ હરુખ શાહ વિનય ગાવી નંદુભાઈ ગાવી ઇલિયાસભાઈ કુરેશી અમૃત લોહાર અશોક ગાવી અહમદભાઈ વોરા રમેશ ભાઈ રાણા ઇસમે કોઈ રાજનીતિ નહીં હૈ ઇસમે કોઈ રાજનીતિ નહીં હૈ યે ઇન્સાન કો ઇન્સાનિયત સે રહેને કે લીએ ઇન લોકો ને યે પ્રોગ્રામ આયોજિત કિયા હૈ ઇસકે લીએ મેં આયોજકો કો ધન્યવાદ દેતા હું મુજે નહીં માલૂમ કે નવાબપુર મેં કોમવાદી કભી ઝઘડે હુએ હુએ મેં સબસે નમ્રતાપૂર્વક હિન્દુ હો યા મુસ્લિમ હો સિખ હો યા ઈસાઈ હો સભી સમાજ કે નેતા સભી સમાજ કે યુવા યુવા કાર્યકર્તા આજકાલ થોડા નારાજ હોતે હૈ એસા નહીં હોના ચાહિએ હમ સબ ગળે મિલકે રહે ભગવાન ખુદા ઇસીલીએ ઉન્હોંને એસા નહીં કહા કે તુમ આપસ મેં ઝઘડા કરો ઇસીલીએ મેં આપને નમ્ર નિવેદન કરૂંગા કે વક્ત કમ હૈ બોલને વાલે હમકો હઝરત મૌલાના મુફ્તી મહેબૂબ સાહેબ કા ભી સુનના હમ તો ગલી વાલે હૈ કભી કભી સુનાતે રહેતે હૈ બોલતે હૈ કે મારે ઘર અદાલત તો આપણા ઘર કા આદમી હૈ પાન પટ્ટી પર જાકે સબસે બાતે કરતા હૈ લેકિન યે મહત્વ કી બાત યે હૈ કે મારે ઘર અદાલત સબકો મિલતા સર્વધર્મ પાલતા હૈ મસ્જિદ મેં જાયેગા મંદિર મેં જાયેગા ગુરુદ્વારા મેં જાયેગા ઓર ક્રિશ્ચન ભાઈઓ કે વહાં ભી જાયેગા વો સવાલ અપના હૈ ઇસ હિસાબ સે હમ સબ લોગ ઇસ એકતા કો ભી એકતા કે લીએ યા જો વિચાર રખે જાને વાલે રખે ગયે હૈ મેં સબકો બહોત બહોત ધન્યવાદ દેતા હું આપ લોકોને ભી મેરે જો સબ થોડે હિન્દી મેં લિખ મરાઠી આપકો યે ભી બાત મિલા દું કે એક સાલ પહેલે એસી હિન્દી પર સે મેરે કોઈ ટીવી ઇન્ટરવ્યુ વાલો ને હજરત કી થી જબ મેને ઉનકો બોલા કે યે મેરી હિન્દી હૈ તુમને બતાઈ દો મેરી હિન્દી નહીં હૈ इतना ही बोलता हूँ। आप सब लोग पहले मेरे दोस्त सब सुन लिए, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।
और इसके बाद आप जिनका भी सभी इंतजार कर रहे हैं, वो आज के प्रमुख वक्ता मौलाना मुफ्ती मनोज का उनका बयान होगा। हमारे जिले के पुलिस अधीक्षक माननीय पुलिस मंत्री साहब आपके सामने अपने विचार को लेकर माननीय पुलिस मंत्री साहब
सगळ्यात प्रथम तुम्हा सगळ्यांना नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आज या कौमी एकता संदर्भात कौमी एकता का महत्व, कौमी एकता का महत्व क्या है वो सुनने के लिए, जिनसे सुनने के लिए आप इच्छता है वो सुनने के लिए आप सब इंतजार में हो। मान्यवर मुफ्ती मोहम्मद साहब, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद साहब हरदार गावी साहब, माननीय मंत्री महोदय श्री नाइक साहब और यहाँ उपस्थित राष्ट्रपति के उपस्थित मान्यवर बुजुर्ग आणि समोर जो जनसमुदाय आहे त्याला सर्वांना वंदन करून मी माझ्या मनातल्या ज्या भावना आहेत त्या आपल्याला सांगतो। मजहब नाही शिकाता आपस में बैर रखना हे आपण नेहमी ऐकतो, पण कौमी एकता का मतलब क्या है? ऐसी हमारे धर्म की एकता नहीं चाहिए। अलग अलग धर्म जो अलग अलग अपने हिसाब से जाते हैं, अपने मजहब के हिसाब से जाते हैं, वो एक दूसरे को जानना चाहिए, एक दूसरे को दिल को जानना चाहिए और फिर अपने दिल में उनके बारे में जो शक है वो शक निकालना चाहिए, तो ही कौमी एकता हो जाएगी। बम्बई में हम ऐसी कौमी एकता के बहुत सारे प्रोग्राम अटेंड करते हैं, वही जाते हम कि आपके दिल में दूसरे के बारे में जो शक है वो शक को जब तक आप निकाल नहीं सकोगे तब तक वो चीज दिखा होता है। तो ये गली गली के लोगों ने अपने एरिया में जो लोग हैं वो दूसरे गली के साथ कैसा उनका बर्ताव होता है, उसी के उन्होंने हमारा जो लॉ ऑर्डर का जो प्रॉब्लम है वो हल होता है। अब हमेशा यही बात दोहरा पे आए कि ये दूसरे के साथ जब भी आपको कुछ उसके बारे में शक है कुछ है, पहला वो जानकारी अगर हमें मिलती है तो उसके बारे में वो जो झगड़ा या आगे जो कुछ अनर्थ होने की संभावना होती है वो आई लोकेट का टर्निंग पॉइंट जो होता है वो हाथ मिल सकती है, उसके बारे में मतलब रहा मिलता है, उसका हल हो सकता है, सुलझा जा सकती है वो जो आपकी जो प्रॉब्लम हो। तो इसके लिए ये जो मुझे अभी आपने जो मौका दिया है 74 के मैं आज तक बम्बई में काम किया हूँ, पहली बार आपके सेवा का मौका आपने दिया है। नाइक साहब ने भी इसके बारे में इसलिए मुझे यहाँ जान उसके लाया है कि आप आना है, इनका जो मैं बहुत पूजा हूँ और मुझे और मेरे जो मेरे की आपकी जो भी कुछ कमरा है आपके कुछ अपेक्षा है अपेक्षा पूरा करने का मैं जरूर कोशिश करूंगा, लेकिन इसके लिए आपके सरकार के आपके सबके लोगों के प्यार की मुझे बहुत बहुत जरूरत है। अकेला पुलिस वाला के अकेला बच्चे ये काम नहीं कर सकता है, इसके लिए आप हर आदमी हर इंसान की मुझे जरूरत लगेगी। आपके सहकार्य के बिना कोई भी काम मैं पूरा नहीं कर सकता हूँ। समझो मुझे कुछ इंफॉर्मेशन है, असामाजिक तत्व जो है एंटी सोशल एलिमेंट है, गुंडा है, क्या कोई जो कोई जुलूस निकल रहा है, अभी तो साथ में ही आ रहे हैं ये जो रमजान के साथ में आ रहे हैं और ये गणपति भी है, तो उससे मुझे देखना है कि ये नवापुर के वाक्य जो इकता है उसके बारे में मुझे कुछ वक्त बताया गया कि यहाँ तो ऐसा कोई झगड़ा नहीं होता, यहाँ तो बहुत दिलोजान से एक दूसरे के मिलते जुलते उनके दिल में अच्छा एक दूसरे जब प्यार है और कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है तो मुझे देखना है कि वो कितना मुझे मदद दे सकते हैं, कितना प्यार हमारे लिए दे सकते हैं। हम भी कोशिश करेंगे जितना चाहे वो, जिसकी वजह से ये लॉ ऑर्डर प्रॉब्लम जो होगा उसको हम हल कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि मैं यहाँ कुछ दिखाने कुछ चमत्कार करने वाला हूँ, ये चमत्कार नहीं हो सकता है आपके सरकार के बिना। तो इसलिए ये जो कोमी एकता का जो महत्व है यही महत्व है, ये सिर्फ अपने जो आदमी को जिसको अपने अपने धर्म के बारे में अपने समाज के बारे में असुरक्षितता महसूस होती है वो भी एक दूसरे के अपने अपने इकट्ठा होते हैं। फिर एक संगठना एक धर्म या एक कौम दूसरे कौम के बारे में शक उनके दिल में शक होता है, वो शक शक होता है। ये जब तक आई अफवाह जैसी होती है वो समझो उनके बारे में क्या है या वो कहाँ करने वाला है, ये अगर आपको मालूम हो जाए कि ऐसे से बात है ऐसी बात नहीं है तो आपके दिल के वो शक निकाल देना यही हमारा काम है। और आपका आपका मदद आपकी मदद लेके मुझे आगे चलना है। तो ये आपकी से मैं आपके सुख दुख में शरीक होना चाहता हूँ, आपके सुख दुख में जो जो निपटारा मेरे से होगा उतना मैं कर सकता हूँ। आपको जो भी कुछ तकलीफ है आप मुझे आके बता सकते हैं या उसके बारे में मुझे मदद कर सकते हैं कि ऐसा आप ऐसा कर रहा है तो तभी ही जो ये किताब का महत्व मैं जान सकूंगा। मुझे ज्यादा मैं बात करूँ बहुत ही मौलान साहब भी आपको बताने वाले हैं तो वही आपको मैं सुनता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मुझे कुछ मेरी कुछ गलती हुई तो मुझे माफ करो, लेकिन दूसरे को भी गलती हो जाने अनजाने में कभी कभी अनजाने में गलती हो सकती है वो आप मुझे अगर बता देंगे तो मैं वो उसका हल कर सकता हूँ। अनजान जान में जान बुझ कर कोई गलती नहीं करेंगे, हम कोशिश करेंगे और आपको फिर इस अच्छे जो अवसर है जो उस अवसर में आपने मुझे शरीक किया आमंत्रित किया इसे मुझे आयोजन का मैं धन्यवाद मानता हूँ और मेरे काम पूरा करता हूँ। जय हिंद जय भारत।
अतिथि मनोरथ के बाद आम लोगों का इंतजार कर रहे थे सभी के साथ समय हुआ।
कौमी एकता कितना गहरा विषय है कि हमारे जैसे आप मुझे नाम रखेंगे तो चलेगा, लेकिन बहुत गहरा सब्जेक्ट है और खास करके हम जिनको सुनने के लिए आए थे वो सुनना बाकी रहा और हमको आपने आगे चल के ढकन दिया कि तुम चलो उनको पीछे रखेंगे, क्योंकि ये बहुत इजी सब्जेक्ट नहीं है। जो इस सब्जेक्ट में बहुत ही ज्ञान प्राप्त किया है ऐसे विद्वानों से और लोगों के पता नहीं, लेकिन मुझे सुनना था और आज ये सुनने का मौका दिया है। ये देने वाले का मैं कितना शुक्रिया अदा करूं ये मेरे पास लक्ष्य नहीं है। कोई ये नवापुर में और ये खास जिन्होंने ये प्रोग्राम रखा है जिनसे हमें कुछ नया कितना मिले ज्ञान मिले और ये जरूर मैं कोशिश करूंगा कि ज्ञान जहां तक मुझे लगे उसका मैं हासिल करने का कोशिश करूंगा। बोलने के लिए जो नहीं उठना, जो सुनने के लिए वो हासिल करने जाए। और इस कार्यक्रम में ये विशेष अतिथि करके ये आए हैं और जिन्होंने विचार रखे, ये अपने एमपी साहब ने भी बात रखी, जो ये शहर के एक प्रमुख करके जो अध्यक्ष हैं प्रिय श्री गोविंदराज वक्ता साहब, उन्होंने भी बातें रखी और माननीय श्री दिलीप जी नायक, उन्होंने भी बातें रखी और आखिरी में एसपी साहब को मैंने कहा कि आपका ये बहुत सब्जेक्ट है, गहरा सब्जेक्ट है और आप भी विचारों को उन्होंने भी बात की और बहुत सारे लोग इसमें शामिल है, वो बोलना नहीं चाहते लेकिन समय की वजह से उनका नाम नहीं आया, लेकिन हमारे श्री अच्छे बोलने वाले यहाँ पे बहुत ही मेहमान है, गांव के भी है जो उतना मैं नहीं बोल सकता, उतना बोलने वाले पीछे है। मैं भाग्यशाली समझ रहा हूँ कि मेरा नंबर लगा और आप सुनने के उत्सुक हो, लेकिन उतना मैं नहीं बोल सकता, तो लेकिन जो खड़ा किया है तो बोलना ही पड़ेगा। नायक खड़ा नहीं करते तो मैं बोलता कि ये मुझे बोलना था, वो भी बोल के गए, वो भी बोले गए, मैं क्या बोलूँ, लेकिन नया तो निकालना होगा, पर निकालने जैसा कुछ रहा नहीं। ये कौमी एकता, ये कौम किसने हर जगह पे किसने पैदा किया, पैदा करने वाले कौन, हमें उधर बैठे हुए हैं, आपके तो सुनने वाले हैं, पैदा करने वाले हमने जन्म किया है, हम लोगों ने राजनीति वालों ने, ये उधर वाला है, ये उधर वाला है। वसाल साहब ने कहा ये पालन करने में अपन चलो ये चालू करते, चलो चलो ये चुनने करते, वो वार्ड में ये लोग है उनको लिखित लो, ये वार्ड में उतनी आबादी है इन्हीं को लिखित लो, ये कौन बोलता, ये कौन कहते, हम नहीं कहते तो हम कम बात में ये करते पैदा करते, हम यहाँ पे लेक्चर तो ऐसे देंगे कि जो अखबार में आ जाएगा तो बोले तो क्या लेक्चर दिए, लेकिन पीछे का अपन बैकग्राउंड देखेंगे तो वही चलने वाला है। इसलिए ये सफाई करना चाहिए कि जो हम आगे चले घर से निकल और फिर बाहर आओ, तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये कौमवाद कौमवादी विलुप्त नहीं रहेगा, वो निकल जा सकता है, लेकिन अपन यहाँ से चालू करना चाहिए और हम अपन सब मिलकर कर सकते हैं, अकेला कोई सुरक्षित नहीं करता, अकेला कोई वही नहीं कर सकता, लेकिन हम बोलेंगे अलग और करेंगे दूसरा, नहीं मिल सकता, मिटाने के लिए है। और इसीलिए यहाँ पे बहुत बुजुर्ग कभी घर से नहीं निकले, वैसे बुजुर्ग बुजुर्ग आए थे, मैं देख के तो बिल्कुल ये हो गया कि क्या कितना इसका महत्व है, इम्पोर्टेंट है। क्या बोलना नवापुर के बारे में, अपन ये पूरा देश ये बोल रहे थे यहाँ से शुरुआत की जाए और इसकी हवा दुनिया भर फैले जाए, लेकिन जिसको पाया बोलते वो वहां से शुरुआत की जाए, लेकिन तैयार कौन होता है, सादा सिंपल हम यहाँ किसके भाषण करेंगे, ये मैं बहुत बुजुर्ग हूँ बड़ा आदमी हूँ ये छोड़ो, मेरे आंखों से देखते हुए बात नवापुर के लिए मैं बोलो, सब हम एक शादी में जाते कोई त्योहार में जाते एक बर्तन खाने के
सिर पर रह जाता है उससे दोस्त लोग जो हमारे संबंध है आपके संबंध है व्यक्ति को त्योहार आता और जुलूस निकलता तो मस्जिद के पास आते उनके आम में कौन सा घूम आता कौन सा आता और कहां से पैदा होता इसको कैसे मिटाएंगे कौन मिटाएगा ऐसे साहब मैं बिल्कुल दावे के साथ बोल रहा हूं कोई किसी कौन का नहीं कौन वाली नहीं हूं मैं मेरा जब मैं बिल्कुल होटल के टाइम में जहां इंग्लिश आई उस टाइम में हमने ये सोचा था कि सर्वधर्म समभाव जिस तत्व में जो मुझे रहना है वही तत्व से मैं चलूंगा और आगे चल के कहीं नहीं जाऊंगा और उसी में मैं रहूंगा क्योंकि नवापुर में मैं देख रहा था कि मैंने जो बात कही है तो मेरे दोस्त हो दोस्त के लड़के हो लेकिन उस टाइम के थी उस टाइम के सीएसआई किया आज के इलाज में होगा मेरा खुद का मेरा भाई हो मेरा भाई का लड़का हो मेरा दोस्त का लड़का हो लेकिन इस तरह के बर्तन का वर्तन बर्तन जो बर्ताव करते हैं आज मेरे इससे स्वर्गीय रजनी भाई मेल ही ने उनको पूछ सकते आज जा मैंने क्या कहा था उनके होते देख के इसमें सबको कह लगा हर टाइम में उनको अंदर कर दो ये क्या समझते उनमें को मैं हमारे युवन लोगों में नहीं है तो ये जहां पे आपने रखा वहां नवापुर में हम आपके प्रतिनिधि हैं हम घर में कल बैठे नहीं पर प्यार में हम भाग लेते इस तरह से यहां भी अब हो गए यहां कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता होता था अभी भी थोड़ा थोड़ा हो रहा है लेकिन हमने किसी को साथ नहीं दी मेरे जैसा रहता कि चलो रे तुम चला दो हम तुम्हारे साथ है तो कहां तक पहुंच जाता ये बीमारी कहां तक पहुंच जाती लेकिन बीमारी मैं अकेला नहीं उतरने वाला लेकिन हम कानून के हिसाब से जो भी ऐसे गलती करते हैं जिनके शरीर में ऐसा खून होगा वो खून बंद करने के लिए सब वो सब जाति के लिए बोल रहा हूं इसलिए नहीं जो गुंडागर्दी करता है सब आए उसमें उसमें कोई जात नहीं रहती उसमें तो कोई धर्म नहीं रहता वो गुंडा मुझे गुंडा रहता बदमाश मुझे बदमाश रहता तो ये नवापुर से हम शुरुआत करेंगे आज मुहूर्त है अच्छा मुहूर्त है ये अच्छा मुहूर्त से मैं ऐलान कर रहा हूँ कि आप हम उसी रास्ते से सब मेरे यहाँ हिंदू भाई है आप मुस्लिम भाई है बुजुर्गो है उनको सबको मैं ऐलान कर रहा हूँ कि आप इस तरह से चलेंगे ये गणपति के उत्सव में आप सब बुजुर्गो ऐसा उनको ये सिखाओ कि किस तरह से लाइट उधर से आए चलते इस तरह से मस्जिद से निकल जाओ उस तरह जैसे खुला सके उस तरह से जाओ तो मैं सही मानूंगा कि हम ये एकता पूर्ण एकता परिषद का सही माने हमने यहाँ पे इसका महोत्सव या एकता रहने का हमने सही किया है और इच्छा कई गणपति उत्सव वाले जबरदस्ती में हरेक को मैं मेरे ओर से 5,001 रुपया दूंगा कोई जबरदस्ती पैसे इकट्ठे करने के लिए कहीं नहीं जाओगे जो नहीं मानता उसके यहां जबरदस्ती ना पैसा लेके आने का ये आज जितेंद्र आज सांगतो प्रत्येक जबरदस्ती मोठे घर त्यांना आपल्या करते 5,001 रुपये देऊन जात म्हणजे कुठे पावत्या ठेवून फिरणार नाही जो नाही जिनको देने का मन नाही उसे यहां मन दुखाने के लिए उन्होंने काम करना ही नहीं और बाकी जहां करना है वो करो और ये मौका मेरा कोई चुनाव सामने देख के मैं नहीं बोल रहा हूं जिनको जहां जाना वो रास्ता अलग है लेकिन ये जो कौमी एकता का जो परिषद है
इसी के लिए मैं बोल रहा हूँ। मेरा कोई मतलब दूसरा नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मुझे चाहिए ये कौमी एकता पूरे नौपुर से तालुका से। जब हम तालुका एक रखेंगे उसमें तो हम दूसरी जगह जाके बोल सकते हैं, वहां बहुत लंबा भाषण करेंगे और घर में कुछ नहीं। तो बोलना बहुत है लेकिन जो मेन है हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद साहब, इनका खास करके सुनना है और इनको बाजू में रख के हम भाषण करते रहेंगे तो कोई फायदा नहीं। इसलिए मैं बोलना चाहता भी था लेकिन मैं बोल नहीं सकता। मैं अभी मेरा ये विचार खत्म करने जा रहा हूँ। आप आए सब, आप सबको शुक्रिया अदा करते हुए मेरे दो लफ्ज समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय हिंद।